नमस्कार, आकाशवाणी दिल्ली से प्रादेशिक समाचार के साथ मैं वैष्णवी। मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने जनसेवा सदन में राजधानी की गौशालाओं को लीज एक्सटेंशन समझौते के प्रमाण पत्र और बायोगैस संरचना स्थापित करने के लिए सहायता राशि प्रदान की। दिल्ली सरकार में मंत्री मंजिंदर सिंह सिरसा ने राजौरी गार्डन में लगभग 14 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का उद्घाटन किया। ऊर्जा मंत्री आशीष सूद ने पीएनजी के विस्तार को लेकर एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की और दिल्ली के भारत मंडपम में चल रहे अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के दौरान द लूम एंड द लेंस वीविंग स्टोरीज फ्रेमिंग लेगेसी शीर्षक पर आधारित एक प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज जनसेवा सदन में राजधानी की गौशालाओं को लीज एक्सटेंशन समझौते के प्रमाण पत्र प्रदान किए और बायोगैस आधारभूत संरचना स्थापित करने के लिए सहायता राशि प्रदान की। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्रीमती गुप्ता ने कहा कि प्रथम चरण में 10 आधुनिक गौशालाओं पर ध्यान केंद्रित किया गया है। यहां निराश्रित गौ माता की सेवा, संरक्षण और संवर्धन सुनिश्चित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि निर्धारित लक्ष्य के अनुसार शीघ्र ही 40 गौशालाओं को सभी सुविधाओं से भरपूर कर सेवा, गोबर से ऊर्जा और स्वच्छता के इस अभियान को व्यापक रूप दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार निराश्रित गौवंश को समुचित देखभाल के लिए प्रतिबद्ध है और गौशालाओं के माध्यम से इस दिशा में ठोस कार्य कर रही है। दिल्ली सरकार में मंत्री और राजौरी गार्डन से विधायक मंजिंदर सिंह सिरसा ने आज अपनी विधानसभा क्षेत्र में लगभग 14 करोड़ की लागत से जुड़े कई विकास कार्यों का उद्घाटन किया। इस अवसर पर श्री सिंह ने कहा कि इन सुविधाओं के माध्यम से वे क्षेत्रवासियों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। इससे राजौरी गार्डन को एक आदर्श विधानसभा के रूप में विकसित किया जा सकता है। वहीं मीडिया से बातचीत में श्री सिंह ने कहा कि इन परियोजनाओं में पीने के पानी की लाइन, सीवरेज की लाइन, लोक निर्माण विभाग की सड़कें और पार्कों का सौंदर्यकरण करना शामिल है।
आज राजौरीगढ़ विधानसभा में तकरीबन 14 करोड़ की लागत से अलग अलग काम शुरू किए गए, जिसमें पीने के पानी की लाइनें हैं, सीवरेज की लाइनें हैं, इसके अंदर पीडब्ल्यूडी की सड़कें हैं, पार्कों का सुंदरीकरण है। ये सारा इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत बड़ी पुश मिली है, जो रेखा गुप्ता जी की सरकार ने 32,000 करोड़ रुपया केवल कैपिटल एक्सपेंडिचर जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर में रखा है, और पिछले साल भी 30,000 करोड़ था, उससे बहुत बड़ी दिल्ली के इंफ्रास्ट्रक्चर में बूस्ट आया है। मैं मानता हूं कि आने वाले दिनों में पीने की पानी, सीवेज की लाइनें, जो बीमारियां 10-11 साल से हमें केजरीवाल जी देके गए थे, उन सबसे अब हमें निजात मिलेगी।
राजधानी में स्वच्छ, सुरक्षित और सुलभ ऊर्जा को बढ़ावा देने की दिशा में ऊर्जा मंत्री आशीष सूद ने आज पाइप्ड नेचुरल गैस पीएनजी के विस्तार को लेकर एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। इस दौरान ऊर्जा मंत्री ने कहा कि राजधानी में पीएनजी कनेक्शन के विस्तार को बढ़ावा देने और अधिक से अधिक नागरिकों तक इसकी पहुंच सुनिश्चित करने के लिए एक व्यापक रणनीति तैयार की गई है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि पीएनजी कनेक्शन प्रदान करने की प्रक्रिया को सरल, पारदर्शी और जनहितकारी बनाया जाए। साथ ही विभाग द्वारा डोर टू डोर संघन अभियान चलाकर राजधानी वासियों को पीएनजी अपनाने के लिए प्रेरित किया जाए। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
श्री सूद ने बताया कि दिल्ली में लगभग 18 लाख पीएनजी कनेक्शन देने की क्षमता है, जबकि अब तक करीब 14 लाख कनेक्शन ही दिए जा सके हैं। उन्होंने शेष 4 लाख कनेक्शन जल्द से जल्द प्रदान करने के लिए अधिकारियों को मिशन मोड में कार्य करने के निर्देश दिए हैं। श्री सूद ने ये भी कहा कि जन कल्याणकारी योजनाओं में भी पीएनजी के उपयोग को प्राथमिकता देने का निर्णय लिया गया है। इसके अंतर्गत अटल कैंटीन, नाइट शेल्टर की रसोइयों, मिड डे मील किचन और एमसीडी की रसोइयों में पारंपरिक गैस सिलेंडरों के पर पीएनजी का उपयोग सुनिश्चित किया जाएगा। ऊर्जा मंत्री ने बताया कि आज की बैठक में ये भी निर्णय लिया गया है कि सरकार हर महीने दिल्ली में 10,000 पीएनजी के नए कनेक्शन लोगों को दे रही है। यदि आवश्यकता पड़ी तो इस संख्या को 25,000 प्रति माह तक बढ़ाया भी जा सकता है। आदित्य की रिपोर्ट के साथ प्रादेशिक समाचार के लिए समाचार कक्ष से प्राची प्रिया।
प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। दिल्ली के उपराज्यपाल तरणजीत सिंह संधू ने आज राजधानी के भलसवा लैंडफिल स्थित ठोस कचरा डंप साइट का दौरा किया। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री संधू ने कहा कि इस निरीक्षण का उद्देश्य जैव उपचार के प्रयासों की प्रगति की समीक्षा करना था। इस दौरान उपराज्यपाल ने दिल्ली नगर निगम को निर्देश दिया कि वे न केवल पुराने कचरे की समस्या का समाधान करें बल्कि इन साइटों पर लगातार आ रहे ताजे कचरे के प्रभाव को भी नियंत्रित करें। साथ ही उन्होंने दिल्ली नगर निगम से ये भी आह्वान किया कि वे राजधानी भर के निवासी कल्याण संघ और बाजार व्यापारी संघ को इस प्रयास में शामिल करने के लिए एक समन्वित अभियान चलाएं, जिससे कचरे को उसके स्रोत पर ही सूखे और गीले वर्गों में अलग अलग किया जा सके। दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने आज एक प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए हाल ही में संपन्न हुए बजट सत्र की जानकारी दी। श्री गुप्ता ने बताया कि इस सत्र में कुल 4 बैठकें हुई, जिसमें सदन ने कुल 15 घंटे और 16 मिनट तक कार्य किया।
सत्र के दौरान हुए विधायी कार्यों का विवरण देते हुए विधानसभा अध्यक्ष ने बताया कि सत्र के पहले दिन दिल्ली का आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 प्रस्तुत किया गया। वहीं सत्र के दूसरे दिन वर्ष 2026-27 का वार्षिक बजट पेश किया गया और 27 मार्च को बजट को सदन में हुई चर्चा के बाद इसे अपनाया गया। श्री गुप्ता ने कहा कि नियम 2080 के तहत 63 नोटिस प्राप्त हुए थे, जिनमें से 44 विशेष उल्लेख सदन में उठाए गए। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि ये मामले लोगों की विभिन्न समस्याओं से संबंधित थे और इन्हें संबंधित अधिकारियों को त्वरित कार्रवाई के निर्देश के साथ भेज दिया गया है। आज हुई प्रेस वार्ता में श्री गुप्ता ने बताया कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग की सभी 7 लंबित रिपोर्टों को सदन के पटल पर रखा गया और अब कोई भी रिपोर्ट लंबित नहीं है। उन्होंने आगे जानकारी दी कि इन रिपोर्टों को लोक लेखा समिति को सौंप दिया गया है। श्री गुप्ता ने कहा कि 15 वर्षों में पहली बार लोक लेखा समिति की 3 रिपोर्टों ने पूर्ण प्रक्रियात्मक चक्र पूरा किया है, जिससे अब पूर्ववर्ती सरकार पर कार्रवाई करने की जिम्मेदारी तय हुई है। साथ ही दिल्ली विनियोग विधेयक 2026, सोसाइटी पंजीकरण विधेयक 2026 जैसे महत्वपूर्ण विधेयक भी इस सत्र में पारित किए गए। श्री गुप्ता ने अत्याधुनिक तकनीक के उपयोग पर जानकारी देते हुए विधान साथी AI चैटबॉट के सफल लोकार्पण की सराहना भी की। इसके अलावा विधानसभा अध्यक्ष ने इस सत्र में विपक्ष की अनुपस्थिति की निंदा भी की। प्रादेशिक समाचार के लिए आदित्य प्रताप सिंह।
दिल्ली के भारत मंडपम में चल रहे अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2026 का आज समापन समारोह का आयोजन किया जा रहा है। इसमें दिल्ली के उपराज्यपाल तरणजीत सिंह संधू, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और दिल्ली के कला और संस्कृति मंत्री कपिल मिश्रा सहित फिल्म जगत के कई कलाकार उपस्थित हैं। इस अवसर पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली अब बस राजनीतिक या प्रशासनिक प्रदेश नहीं रह गया है, बल्कि ये अब कला और संस्कृति का केंद्र बनकर उभर रहा है। वहीं कला और संस्कृति मंत्री कपिल मिश्रा ने कहा कि भारत के लेखकों, कवियों और कलाकारों को अपने काम को इस फिल्म महोत्सव के माध्यम से देशभर को दिखाने का अवसर मिल रहा है। इसके अलावा आज शोले फिल्म की विशेष स्क्रीनिंग प्रस्तुत की गई। साथ ही कलाकार अनुपम खेर द्वारा कलाकारी पर मास्टर क्लास और भूमि पेडनेकर के साथ संवाद सत्र भी आयोजित किया गया। वहीं कल लालू कृष्ण सदा सहायते की भव्य स्क्रीनिंग की जाएगी। वहीं अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के दौरान द लूम एंड द लेंस वीविंग स्टोरीज फ्रेमिंग लेगेसी शीर्षक पर आधारित एक प्रदर्शनी का आयोजन भी किया गया। इस प्रदर्शनी का आयोजन दिल्ली सरकार के पर्यटन विभाग, केंद्र सरकार के हथकरघा विकास आयुक्त और एक निजी संस्था के सहयोग से किया गया।
इस प्रदर्शनी में भारतीय हथकरघा और सिनेमा की कालजयी गाथाओं को एक आकर्षक और सांस्कृतिक रूप से अत्यंत प्रभावशाली रूप में प्रस्तुत किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि ये फिल्म महोत्सव दिल्ली सिनेमा भारत की सांस्कृतिक कल्पना और कहानी कहने की समृद्ध विरासत का एक उत्सव है। द लूम एंड द लेंस जैसी पहले दिल्ली को हमारी विरासत और आधुनिक रचनात्मकता के संगम के रूप में बेहद खूबसूरती से प्रस्तुत करती है। वहीं दिल्ली के पर्यटन मंत्री कपिल मिश्रा ने कहा कि दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव एक सांस्कृतिक मंच के रूप में उभर रहा है और द लूम एंड द लेंस जैसी पहलों के माध्यम से हम इसके दायरे को सिनेमा से भी आगे बढ़ा रहे हैं। श्री मिश्रा ने कहा कि ये प्रदर्शनी पूरे भारत की विविध हथकरघा परंपराओं को एक साथ लाकर और उन्हें फैशन तथा फिल्म जैसे सशक्त माध्यमों से प्रस्तुत करके एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को दर्शा रही है। कल तक चलने वाले इस महोत्सव में 47 देशों की 125 से अधिक फिल्मों का प्रदर्शन किया जा रहा है। महोत्सव का उद्देश्य रचनात्मक अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना, फिल्म पर्यटन को प्रोत्साहित करना और नई प्रतिभाओं को अंतर्राष्ट्रीय मंच प्रदान करना है। आदित्य की रिपोर्ट के साथ प्रादेशिक समाचार के लिए मैं फरहत नाज।
राष्ट्रीय आधुनिक कला केंद्र NGAMA ने आज 72वां स्थापना दिवस मनाया। इस अवसर पर केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय के सचिव विवेक अग्रवाल ने संग्रहालय के पहले छापांकन स्टूडियो का उद्घाटन किया। इस अवसर पर श्री अग्रवाल ने कहा कि NGAMA भारतीय आधुनिक और समकालीन कला का महत्वपूर्ण केंद्र है। वहीं समारोह को संबोधित करते हुए NGAMA के महानिदेशक संजीव किशोर गौतम ने कहा कि संस्कृति मंत्रालय के साथ मिलकर स्थानीय और बाहर के कलाकारों को जोड़ने का निरंतर प्रयास किया जा रहा है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। दिल्ली की जल व्यवस्था को अधिक सुदृढ़, पारदर्शी और भविष्य के अनुरूप बनाने की दिशा में आज एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए दिल्ली के जल मंत्री प्रवेश साहिब सिंह ने दिल्ली जल बोर्ड ऑडिटोरियम में समर एक्शन प्लान 2026-27 का शुभारंभ किया। इस अवसर पर श्री सिंह ने चैटबॉट, आधुनिक ग्राहक संबंध प्रबंधन और DJB1916 मोबाइल ऐप जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म का शुभारंभ भी किया, जो सीधे तौर पर नागरिकों को सिस्टम से जोड़ते हैं और जवाबदेही को मजबूत करता है। अपने संबोधन में जल मंत्री ने बताया कि इस समर एक्शन प्लान के अंतर्गत राजधानी में लगभग 1002 MGD जल उत्पादन बनाए रखने का लक्ष्य रखा गया है। साथ ही सभी पुराने पंपों और मशीनरी को अपग्रेड किया जा रहा है, जिससे आपूर्ति और अधिक स्थिर और प्रभावी बने। टैंकर व्यवस्था पर बल देते हुए श्री सिंह ने बताया कि अब इन टैंकरों पर GPS ट्रैकिंग, रियल टाइम मॉनिटरिंग और डिजिटल रोड सिस्टम के जरिए नजर रखी जाएगी। आकाशवाणी पर विशेष श्रृंखला पीपल्स पद्म के अंतर्गत आगामी एपिसोड में डॉक्टर सुरेश हंगनवाड़ी से बातचीत प्रसारित की जाएगी। हीमोफीलिया के उपचार और जागरूकता के क्षेत्र में कार्यों के लिए डॉक्टर सुरेश ख्याति प्राप्त हैं, उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया जाएगा। ये कार्यक्रम आज शाम 5:10 पर 100.1 आकाशवाणी गोल्ड पर प्रसारित किया गया। आप इसे न्यूज ऑन AIR ऐप और न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर भी सुन सकते हैं। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज कहा कि बायो बिटुमेन को अपनाना भारत की जलवायु प्रतिबद्धताओं, नेट जीरो लक्ष्यों और आत्मनिर्भर भारत जैसी कई पहलों के अनुरूप है। श्री चौहान नई दिल्ली में आयोजित बायो बिटुमेन वाया पायरोलिसिस नामक प्रौद्योगिकी हस्तांतरण समझौते के अवसर पर आयोजित समारोह को संबोधित कर रहे थे। श्री चौहान ने कहा कि उच्च मूल्य वाले अवसंरचना अनुप्रयोगों के लिए कृषि अवशेषों का उपयोग किसानों के लिए अतिरिक्त आय के अवसर प्रदान करता है। इस दौरान विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि बायो बिटुमेन का प्रौद्योगिकी हस्तांतरण भारत को आत्मनिर्भर बनाने में सहायक है। दिल्ली पुलिस की विशेष प्रकोष्ठ ने राजधानी के गाजीपुर इलाके से एक अवांछित आतंकवादी को गिरफ्तार किया है। मीडिया से बातचीत में दिल्ली पुलिस की विशेष प्रकोष्ठ के अतिरिक्त आयुक्त प्रमोद सिंह कुशवाहा ने बताया कि आरोपी हाल ही में पकड़े गए एक आतंकी मॉड्यूल का संचालक था। उन्होंने बताया कि आरोपी के पास से बांग्लादेश, नेपाल और पाकिस्तान की विदेशी मुद्रा बरामद की गई है। राजधानी में आज दिन में बादल छाए रहे और शाम के समय हल्की बूंदाबांदी हुई। मौसम विभाग के अनुसार आज का अधिकतम तापमान 35.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, वहीं न्यूनतम तापमान 20.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। विभाग के अनुसार कल बादल छाए रहने और शाम के समय हल्की बारिश होने की संभावना है, वहीं कल का अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 18 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने जनसेवा सदन में राजधानी की गौशालाओं को लीज एक्सटेंशन समझौते के प्रमाण पत्र और बायोगैस संरचना स्थापित करने के लिए सहायता राशि प्रदान की। दिल्ली सरकार में मंत्री मंजिंदर सिंह सिरसा ने राजौरी गार्डन में लगभग 14 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का उद्घाटन किया। ऊर्जा मंत्री आशीष सूद ने PNG के विस्तार को लेकर एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। और दिल्ली के भारत मंडपम में चल रहे अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के दौरान द लूम एंड द लेंस वीविंग स्टोरीज फ्रेमिंग लेगेसी शीर्षक पर आधारित एक प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। और इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।